हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशता तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोनुमुपया मे गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ आज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 30। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची कह रहे हैं, स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमाया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमाया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमाया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। स ईवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। शब्दों का अर्थ देखिए, स यानी वह, वह तो कौन सा, जो अभी हम लोगों ने श्लोक नंबर 28 और 29 में वासुदेव के विषय में पढ़ा ना, कि वो वासुदेव है, वही सब कुछ करने वाला है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति ही। तो वही वासुदेव क्या करने वाले हैं, अब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। पहले तो वही एकमात्र भगवान है, और उसके बाद क्या करते हैं, स वह ए वेदम, एव मतलब ही, इदम मना यह, इस ससर्जम यानी उत्पत्त किए गए, यानी कि उन्हीं वासुदेव की शक्ति से उत्पन्न किया गया है। अग्रे यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखा है, ससर ज अग्रे, ये तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह पहले से, अग्रा मना वो पहले अकेले थे, उसके बाद ये सब मटेरियल जो वर्ल्ड जितने भी है ना लोक, वो सब उन्होंने उत्पन्न किए हैं। और भगवान आत्ममायया, भगवान है वो, उन भगवान ने किया, और कैसे किया, आत्ममायया अपनी निजी शक्ति से। समझ में आया कि वो भगवान पहले अग्रे यानी कि पहले वो सिर्फ अब खुद ही थे, और भगवान ऐसे हैं कि वो इस भौतिक जगत की उत्पत्ति से पहले थे, है ना। उनका शरीर, उनका लोक, उनका नाम, उनका सब कुछ, भगवान संपूर्ण थे। ऐसा नहीं कि भगवान को शरीर इस भौतिक जगत का निर्माण होने के बाद मिला। भगवान का हर कार्य वो पूर्ण है शुरू से, तो अग्रे का मतलब होता है, इसका मतलब है उनके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आई संसार की उत्पत्ति के बाद, वो ऐसे के ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ससर्ज उन्होंने उत्पन्न किया, कैसे किया, आत्ममाया, अपनी निजी शक्ति से क्या उत्पन्न किया, सदसत रूपयाचा, सदमन कारण, जो सत्रूप है, कारण है, जो दूसरे कारण है, जैसे सर्व कारण कारण तो भगवान है, लेकिन दूसरे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि ये सत है, और असत मतलब प्रभाव फल, यानी कि जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत, जैसे यह लोक, ये सारी जीवात्माएं तो शाश्वत है, लेकिन इस संसार में जो अशाश्वत है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि, ये जो सब समाप्त होने वाली है वो सारी चीजें, और सत यानी कि जो शाश्वत है, वो सारी रूप पाया यानी रूपों के द्वारा। तो यहाँ सत और असत रूपों के द्वारा, च मन तथा असो मन वही भगवान, वही भगवान जो पहले से थे, शाश्वत थे, और उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया, किसे, अपनी शक्ति से, और फिर क्या, चासो गुणमया गुणो विभु, गुणमय मन प्रकृति के गुणों में, वो वास्तव में तो गुण विभू है, यानी कि वो परब्रह्म है, वो ब्रह्म है, विभु मतलब उनकी क्वालिटी क्या है कि वो इस संसार से विभु है। हम सब क्या है, अणु है, हमारे अंदर और भगवान के अंदर यही फर्क है कि हम अणु हैं और वो विभु है, लेकिन वो क्या करते हैं, गुणमया इस प्रकृति के गुणों में प्रविष्ट किया। कैसे प्रविष्ट किया, जैसे ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण में, शिव जी के रूप में तमोगुण में, और विष्णु जी के रूप में सत्व गुण में, इस वो हालांकि वो गुणातीत है, वो गुणमया यानी कि वो तो गुणों में फिर भी आए, लेकिन गुण आगे क्या लिखा है, अगुण, अगुण मतलब दिव्य है, वो गुणातीत है, वो इन गुणों में फंसते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गुणों में आना स्वीकार किया है, गुणों को एक्सेप्ट किया है, क्यों, क्योंकि भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। अनुवाद देखिए, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान यानी वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। यहाँ पर भगवान का अत्यंत ही सुंदर वर्णन हुआ है। सबसे पहले तो ये बताया गया स ए वेदम ससर जागरे कि वो शुरू से थे, वो असल में आदि पुरुष हैं, जैसे शास्त्र कहता है आद्यम पुराण पुरुषम, वो आदि पुरुष हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नमे विदु सुरकणानां प्रभवम् न महर्षयः अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वश, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्यों, अहम मादेर ही देवानाम, क्योंकि मैं ही देव सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, क्योंकि भगवान कारण है, और यहाँ पर भी बताया स ए वेदम ससर जागरे, वो कारण है, और उन्होंने क्या किया, भगवान आत्मा माया अपनी आत्मा के द्वारा क्या किया, सद सद रूप राजोसा चासौ, सॉरी सदसद रूपया चासौ, और अपने निजी शक्ति से सत और असत रूपों को प्रकट किया, गुणमया गुण विभु, वो गुणों से रहित हैं, गुणातीत हैं, लेकिन गुण एक्सेप्ट किए। वास्तव में कृष्ण समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के उद्गम हैं, लेकिन यहाँ से यह सृष्टि के उत्पत्ति से स्टार्ट से ही हमें यह रियलाइज होता है, शास्त्र हमें यह बताते हैं कि भगवान ने अपनी शक्ति से इस संसार को उत्पन्न किया, तो वो शक्ति
जाहिर सी बात है कोई पुरुष की है, यानी कि भगवान साकार है, क्योंकि साकार है तो उन्होंने अपनी बुद्धि से, अब साकार है तो भगवान ने अपनी बुद्धि से, भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, तो वास्तव में उसकी बुद्धि है तभी तो दूसरों को बुद्धि दी है, और बुद्धि से ही संसार को, पूरे संसार को सदसत रूपया चासव, और सत और असत रूपों को प्रकट किया। जैसे मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन उत्पत्ति के लिए, जो उत्पत्ति जब भगवान कर रहे हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि सदसत रूपया चासो, भगवान आत्म मायाया, मैंने अपनी शक्तियों से, अब जब भगवान की शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है वो कंप्लीट है, क्या है उसके अंदर वो रूप है, स्वरूप है, तो भगवान के अंदर कैसे नहीं होगा, है ना। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि कंप्लीट है, तो शास्त्र कहता है ईशोपनिषद श्लोक नंबर 1 में कहा गया, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भगवान पहले पूर्ण है, उनसे जो निकला है वो भी पूर्ण है, और जो बच गया है वो भी पूर्ण है। भगवान कभी इनकम्प्लीट नहीं हो सकते। जैसे अब भगवान ने जो उत्पन्न किया, जैसे हमें उत्पन्न किया तो हम भी सृष्टि कर सकते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि कर सकते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि के लिए आपको पर्सन होना पड़ेगा, हम सब भगवान के अंश हैं, और हम जो कार्य करते हैं भगवान विभु हैं, आखिर में जो शब्द लिखा हुआ है ना विभुम गुणमया गुणों विभुम, ये भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी है, और जीव में और भगवान में यही अंतर भी है। मायावादी कहते हैं कि भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं है, यदि भगवान जो जीव जो है वो मुक्ति के बाद भगवान के अंदर समा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का और जीव का अंतर ये सदैव बना रहेगा, हम भगवान की भिन्न अंश हैं। और शास्त्र कहता है अनोरहियाम महतो महियाम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, हम भगवान विभुओं में सबसे विभु हैं और हम अणु में सबसे अणु हैं। तो हमारा कभी भी मेल, हम कभी भगवान के, इवन शास्त्र तो यहाँ तक कहता है न तत् समः अधिको कुतोन्यो, नो बडी कैन बी इक्वल टू कृष्णा, हाउ कैन बी बेटर, है ना। जो न तत् समः उसके बराबर भी कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकलो ईश्वर कृष्ण आरसब भृत्य, भगवान अकेले कृष्ण हैं और हम सब उनके दास हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, सबसे पहले ईश्वर जो है, परम ईश्वर, बाकी ईश्वर का मतलब होता है क्रिएटर, तो क्रिएटर हम भी क्रिएटर्स हैं, है ना, हम भी कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोल करते हैं अपने उत्पत्तियों को, अपने ना शक्ति से जो भी उत्पन्न किया है उनको, परंतु परम ईश्वर भगवान है। और मायावादी एक और भी बात कहते हैं कि चलो ठीक है, भगवान तो आध्यात्मिक है, ठीक है, भगवान आध्यात्मिक है, पर उन्होंने इस संसार में आकर भौतिक शरीर स्वीकार किया है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स एवेदम ससर जागरे, वो पहले से थे और पहले से कंप्लीट थे, तो फिर जब पहले से ही कंप्लीट थे तो फिर संसार में आकर उन्होंने यह भौतिक शरीर कैसे एक्सेप्ट किया। भगवान पहले से पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है मैं भी शरीर ले लाऊं, नहीं, भगवान का शरीर भी नित्य है। तो भगवान यहाँ पर क्या बताया स एवेदम स सर्जाग्रे, उन्होंने क्या किया, इदम सृष्टि का उत्पन्न किया, लेकिन वो पहले से थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब वो पहले से कंप्लीट थे तो उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की क्यों आखिर। तो चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं, वे कहते हैं कृष्ण भुलिया जीव भोगवांछा करे, पाशते माया तारे जाकोटिया धरे, कृष्ण भुलिया जीव। जीव भगवान ने क्या किया, हम सब भगवान के भिन्न अंश है, शुरू से भगवान के भिन्न अंश है। ऐसा नहीं है कि पहले हम भगवान के अंदर चिपके हुए थे और फिर सृष्टि करने के बाद भगवान ने अलग अलग जीव आत्माओं को प्रकट किया, नहीं, हम शुरू से भगवान के पार्ट्स हैं, पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। तो कुछ जीव जो हैं उन्होंने क्या किया, भोग वांछा करे, कि उनके हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी इंद्र तृप्ति करें। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप इंद्र तृप्ति करना चाहते हो, पाशते माया तारे जाकोटिया धरे। फिर भगवान ने माया से इस संसार को रचा और इस संसार में इस जीव को भेजा कि जाओ तुम जैसे इंद्र तृप्ति करना चाहते हो करो, और जब तुम उब जाओगे थक जाओगे तो तुम वापस मेरे पास आ जाना, तुम अपनी इंद्र तृप्ति की जो लालसा तुम्हारे अंदर है वो जाके इसको पूरा करें। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट शब्द से ऐसा लगता है निराकार है, उसका कोई स्वरूप नजर नहीं आता, लेकिन वास्तव में कोई ना कोई होता है जो इस गवर्नमेंट, जिसके आदेश अनुसार यह गवर्नमेंट कार्य करती है, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना। उसी तरह भगवान के निराकार स्वरूप से इस जगत, ये जगत पूरा व्याप्त है, लेकिन स्वयं भगवान साकार है जिसके अध्यक्षता में यह सारा जगत कार्य करता है। भगवान बताते हैं 9.10 में, माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, के मेरी अध्यक्षता से यह संसार कार्य करता है और जिससे यह समस्या और अचर जीव उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन और विनष्ट होता रहता है। लेकिन ये बारंबार उत्पन्न होता है, प्रलय होती है, लेकिन वास्तव में यह संपूर्ण जगत का प्रेसिडेंट जो है, भगवान जो है, वो वास्तव में शाश्वत है और वो आदि है। इसे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ससर जागृत, वो शुरू से है और इस सृष्टि के अंत के बाद भी वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का पद सदैव दिव्य रहता है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई है। जैसे भगवान ने अभी हमें बताया कि सदसद रूपया चासो, कि जो भी सद यानी कि कारण शक्तियां और जो कार्य शक्तियां यानी शाश्वत शक्तियां और अशाश्वत शक्तियां, वो सब भगवान से ही आती हैं। तो भगवान सदैव दिव्य अपने इटर्नल स्वरूप में होते हैं, अतएव वे भौतिक गुणों से प्रभावित अप्रभावित रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर भी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है, वो अप्रभावित, वो भगवान गुणातीत होते हैं, उनका अस्तित्व स्वरूप कार्य तथा सामग्री ये सब भौतिक सृष्टि के पहले से विद्यमान थे। यहाँ पर पहले बताया ना ससर जागरे कि वो पहले से ही थे, तो जब वो पहले से ही थे तो श्री प्रभुपाद जी बोलते उनका स्वरूप भी था, ऐसा नहीं कि पहले निराकार थे, वो पहले से ही कंप्लीट थे, उनका अस्तित्व उनका स्वरूप उनके कार्य तथा उनकी सामग्री ये सब भौतिक सृष्टि से पहले से विद्यमान थे। और यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है नीचे, उसके विषय में क्या बताया गया कि मायावाद संप्रदाय के प्रधान श्रीपाद शंकर आचार्य ने अपने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया कि वाकई में श्री कृष्ण आदि पुरुष है, अनादि आदि गोविंद, और वे सर्व आत्मा आत्ममय और उन्हें इस जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। सर्व आत्ममय है यानी कि वो सर्वशक्तिमान है, अपने आप में संपूर्ण है, इस संसार के गुणों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। ये जो भगवान के जो आध्यात्मिक गुण हैं, क्योंकि भगवान विभू हैं और भगवान इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, तो ये जो संसार की सृष्टि और संसार जो है वो भगवान से बिल्कुल अलग है। भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 9.5 में, बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं, न चमस्थानि भूतानि पश्यमे योगम ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, यानी कि सारी चीजें मैंने ही बनाई हैं, लेकिन मुझ में स्थित नहीं रहती। ये भगवान का अचिंत्य भेदाभेद शक्ति है। तो भगवान आगे कहते हैं, पश्यमे योगम ऐश्वरम, जरा मेरे इस योगेश्वरी को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं इस विराट जगत में व्याप्त होने के बावजूद भी इस संसार का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ये सब कुछ आया है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तो आज बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के इस जगत रचना का नाम बताना शुरू किया है, और इन चार पांच श्लोकों में हम यही पढ़ेंगे। आगे सूची कह रहे हैं श्लोक नंबर 31 में, कृपया मेरे साथ रिसाइट कीजिए, तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजिम्बितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः विज्ञानेन विजृंभितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। शब्दों का अर्थ देखिए, तया यानी उनके द्वारा किसके द्वारा, भगवान वासुदेव के द्वारा, विलसितेष्वेष, विलसितेषु अर्थात यद्यपि कार्य में, एषु इन, गुणेषु यानी गुणों में, गुणवान यानी गुणों से प्रभावित होने वाला, इव यानी मानो, यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान इस संसार में जब जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसके अंदर वो भी जीव के अंदर भी परमात्मा स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो गुणों से अतीत होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो गुणों में रह रहे हैं, गुणों में रहते। यहाँ पर क्या बताया, यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया अलौकित रहते हैं। वो फिर भी अंतविष्ट अंत प्रविष्ट आभाति, वो उसके अंदर आ जाते हैं। अब जीव जब भगवान उत्पन्न करते हैं संसार में, जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो इस संसार में भगवान उस जीव की सहायता करने के लिए उसके हृदय में आकर आसीन हो जाते हैं और विज्ञानेन विजृंभिता अंत प्रविष्ट आबादि का क्या मतलब है, अंत मतलब भीतर, प्रविष्ट मतलब घुसा हुआ, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। आभाति यानी प्रतीत होता है विज्ञानेन दिव्य चेतना से, ठीक है, अपनी दिव्य चेतना से उसे ये याद कराते हैं, जो भी याद कराने की चीजें हैं पिछले जन्म में आपने क्या इच्छा की थी ये सब बताते हैं उसको, और वो जो कार्य कर रहे हैं, जो जीव कार्य करता है उसको देख रहे होते हैं अंदर बैठकर। विजृंभित यानी पूर्णतया प्रकाशित, वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? भगवान जो कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि तबोतानि माम तु वेदन कश्चन, मैं सब कुछ जानता हूँ जो पहले हो चुका है, जो होने वाला है और जो हो रहा है उस सब के विषय में मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर बताया विज्ञानेन विजृंभित, जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो इस संसार में जीव की सहायता करने के लिए सदैव जीव के साथ, जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं समस्त जीवों के हृदय में आकर विराजमान हो जाता हूँ। क्यों वहां पर बैठ के क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, उनको स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ और उनको विस्मृति भी देता हूँ, यानी कि जो भूलने की बातें हैं वो उनको भुला देता हूँ और जो याद करने की बातें हैं उनको याद कराता हूँ। जैसे जीव इस संसार में आता है तो स्वतः रिलेशंस करता है कि भाई इसके साथ मुझे इस तरह का रिलेशन होना करना है, खुद ही से हमें अंदर से प्रेरणा मिल रही होती है। और जैसे छोटा बच्चा भी पैदा हो रहा होता है उसको ज्ञान कहाँ से आता है कि मुझे माता के स्तन पान करके दूध पीना है, या अच्छे से मनुष्य के बच्चे को तो चलो ठीक है हॉस्पिटल में बताते हैं इस तरह, लेकिन जानवर के बच्चे को भी पता होता है कि मेरी माता है ये और इसके साथ मेरा ये संबंध है। तो ये सब जीव को ज्ञान भगवान देते हैं अंदर बैठकर। वास्तव में इस भौतिक जगत का निर्माण तभी संभव है जब आध्यात्मिक भगवत शक्ति इसके अंदर सम्मिलित हो, ठीक है। तभी इस यहाँ पर क्या लिखा, तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानत, यानी कि वो वास्तव में गुणातीत है लेकिन फिर भी इस संसार में गुणों को एक्सेप्ट करके आपके हृदय के अंदर अंत प्रविष्ट आबाते, आपके हृदय के अंदर आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। पहले क्या किया भगवान ने, इस प्रकृति को उत्पन्न किया। पहले श्लोक में क्या हमने पढ़ा कि स ए वेदम ससजागृ, वो शुरू में थे और उन्होंने क्या किया, भगवान आत्मा माया अपनी शक्ति से सदसद रूप पयाचासो, अपने शक्ति से कारण और कार्य स्वरूपों को प्रकट किया, गुणमया गुणो विभु, वो गुणातीत होते हुए गुणों को एक्सेप्ट किया और वो विभू हैं। और आज हमें बता रहे हैं इस श्लोक में कि जब उन्होंने जीवों को उत्पन्न कर दिया तो फिर भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद क्या किया, अनुवाद देखिए, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव उसी ने उनके द्वारा लिखा हुआ ना तया, तो जो अभी हम लोगों ने 28-29 पढ़ा था ना उसी को डायरेक्ट आगे कर रहे हैं कि उन वासुदेव ने अपना विस्तार करके उसमें प्रविष्ट किया, अंत प्रविष्ट आभाति, उसके अंदर प्रविष्ट हो गए परमात्मा के स्वरूप में। जैसे भौतिक जगत में यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है, जब भी कोई जीव उत्पन्न होता है उसके अंदर अगर आत्मा नहीं होती है तो वो शरीर में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, वो बढ़ता नहीं है। और जिस दिन बच्चा गर्भ में स्थापित होता है उसी दिन से वो थोड़ा 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 करके बढ़ता है और 9 महीने के बाद वो पूर्ण हो जाता है और वो इस योग्य हो जाता है कि वो संसार में आकर अपने आप को बना के रख सकता है। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन यदि उस बच्चे के अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा को संचालित करने वाले परमात्मा नहीं होते तो वो बढ़ता कैसे। अगर संसार में भी हम देखें किसी के हृदय में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो संसार भगवान उत्पन्न करते हैं। क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि जीव की इच्छा होती है भोग करने की, तो संसार में भगवान उसको भोग प्रदान करने के लिए अवसर, भोग प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, और अवसर प्रदान करने के बाद सारी फैसिलिटीज भी प्रदान करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी का मैंने लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने ये ना बताया, उदाहरण दिया कि जब कुंभ मेला लगाते ना, तो कुंभ मेले में बहुत सारे लोग आते हैं स्नान करने के लिए और सब, वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी टाइम पर वो कुंभ मेला का वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर आके पूरा अरेंजमेंट करती है कि ताकि जो यहाँ पर व्यक्ति आएंगे एंजॉय करने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उनको सुविधाएं प्राप्त हो। उसी तरह कृष्ण ने भी यह भौतिक जगत हमारे लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्माण किया, और यहाँ पर सारी सुविधाएं, हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी सुविधाएं दी हैं, और साथ में भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, कि वो बैठे होंगे तो हमें पता चलेगा ना, अभी 84 लाख योनियां हैं, कभी हम किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में जाते, कभी किसी योनि में जाते, तो हमें याद नहीं रहता ना कि हम पहले हम क्या थे, पहले हमें किस चीज की आशा थी, तो भगवान वो सारा हमारे हृदय में आकर परमात्मा के स्वरूप में, हम चाहे कटर का कीड़ा भी बन जाते हैं तो भी भगवान जो है वो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में आसीन होते हैं, वो हमें मत स्मृति ज्ञानम अपोहना च, वो हमें मत बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जो भूलने की यानी कि विस्मृति भी भगवान हमें देते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है ना, तो भगवान उसको पूरा अवसर देते हैं कि तुम्हें तुम्हें खाने का तुम्हारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व है, तो भगवान उसको देते हैं, हाँ खाओ, हर वो चीज जो खा सकते हो खाओ, यहाँ तक कि विष्ठा भी अगर तुम्हें खाने की इच्छा है तो तुम्हें सुअर बना देता हूँ, तुम विष्ठा को भी खाओ, हर चीज खाने की इच्छा है तो तुम सुअर बन जाओ ताकि तुम मल को भी खा सको। और फिर अगर किसी को अपने शरीर का ना डिस्प्ले करने का बहुत शौक होता है, अपने शरीर की नुमाइश करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो भगवान कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा इच्छा है ना अपने शरीर को सबको दिखाने की, तो तुम नग्न रहने के लिए तैयार हो जाओ और वृक्ष योनि में आ जाओ, और कितने सैकड़ों सालों तक वृक्ष जो है वो इसी नग्न अवस्था में खड़े रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पूरी पूरी अवसर भी प्रदान करते हैं और पूरी पूरी फैसिलिटीज भी प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा, तया विलसितेषु गुणेषु गुणवान्विति अंत प्रविष्टो आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। विज्ञान भी प्रदान करते हैं, ज्ञान भी प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कभी नहीं बदलता, वो अपने दिव्य शरीर को ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो इस संसार में आते हैं तो मायावादी ऐसे बोलते हैं कि, भगवान भी बताते हैं 9.11 में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनिम आश्रितम। भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य देह स्वीकार करता हूँ तो जो बेवकूफ है वो मुझे नहीं जानते हैं, परम भावम अजानंतो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, मम भूत महेश्वरम, कि मैं ही समस्त भूतों का, समस्त जीवों का महेश्वर हूँ। तो कृष्ण जो है यहाँ पर क्या क्या विज्ञानेन विजृंभिता, उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 4th अध्याय में अर्जुन को, अहम विवस्वते योगम, कि मैंने सबसे पहले यह ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्य देव को दिया। तो अर्जुन के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन कहते कृष्ण आपने दिया, आप और मैं तो आधुनिक काल में है, सूर्य देव तो प्राचीन है, तो फिर आपने कैसे दिया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन आपके और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है परंतु आपको याद नहीं है। भगवान कहते हैं 4.5 में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, मुझे वो सब याद है, तान्यहं वेद, मुझे सब पता है, न त्वं वेत्थ परंतप, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है। तो भगवान जो है वो हमारी पूर्ण पुरानी जो जीवन जो भी हमारा पुराना जन्म है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें शरीर प्रदान करते हैं और स्वयं हृदय के अंदर विराजमान होकर हमें याद भी दिलाते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा थी तो अब उसको भोगो। अनुवाद देखिए, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रविष्ट कर देते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक दिखते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया अलौकिक रहते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण सदैव अलौकिक हैं, दिव्य शरीर में दिव्य ही होते हैं, दिखते हैं ऐसा कि हमारे जैसे प्राणी हैं, परंतु वो सदैव दिव्य होते हैं। अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः, पूर्णतया प्रकाशित है, विज्ञानमयी है, ज्ञानमयी है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव आत्मा भगवान की भिन्न अंश है और जो जीव आत्मा वैकुंठ जगत में रहने के लायक नहीं है उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे भी जी भर कर भोग कर सकें। क्योंकि वैकुंठ जगत में रहने के लायक क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल वही रह सकते हैं जो भगवान का दास बनकर रहते हैं। जीवेन स्वरूप और कृष्णेन नित्य दास, जो दास अनुदास अनुदास बनकर रहना चाहते हैं वो वहां पर रह सकते हैं, लेकिन जो भोग करना चाहते हैं वो वहां रहने के लायक नहीं है और उनके लिए भगवान ने भौतिक जगत निर्माण करके उसके अंदर डाल दिया। परमात्मा तथा जीवों के नित्य सखा के रूप में भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शित बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, परमात्मा के रूप स्वरूप में हृदय में आकर बैठ जाते हैं और पथ प्रदर्शित करते हैं, उनको बताते हैं तुम्हारी ये इच्छा थी अब भोगो, और जो भी जीव कर रहा है उसको साक्षी होते हैं। उपदृष्टा अनुमंता जो हमने पढ़ा था ना 13वें अध्याय में, कि वो साक्षी रह जाते हैं। और जहाँ जीव आत्माएं भौतिक भोग करती हैं वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव आत्मा भोग करती है गुणों के आधीन होकर तो परमात्मा भी उसके साथ भोग करना शुरू हो जाते, नहीं, वो दिव्य पद पर ही आसीन रहते हैं, वो कभी भी भोगों में हिस्सा नहीं लेते, वो खाली क्या करते, देख रहे होते हैं। और श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, ये जो हमने इसको बहुत बार पढ़ा है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी होते हैं, एक साक्षी पक्षी होता है और एक वृक्ष के फलों को खा रहा होता है, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियों का साक्षी है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीव आत्मा है। हम क्या करते हैं, जीव आत्मा इस संसार में आकर भोग करने की इच्छा करता है और उस भोग करने के लिए बहुत सारे पवित्र और अपवित्र कार्य करता है, और भगवान क्या करते हैं, साक्षी रूप में हृदय के अंदर देख रहे होते हैं कि ये नालायक इस संसार में आकर कर क्या रहा है। फल खाने वाला यानी जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान यानी परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहता है। लेकिन वो पूर्ण रहते हुए भी वो सदैव आपके हृदय में रहता है, और जो भौतिक इच्छा करने वाला जीव आत्मा है वो तो अपनी रियलिटी कौन सी, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास को बोलकर खुद ही भोगवांछा करे, है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, है ना, वो भोग की वांछा करता है। जब भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहते हैं और परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। क्या अंतर है कि बद्ध जीव जो है वो भूल जाता है कि मेरी वास्तविकता क्या है, और भगवान सदैव ज्ञानमय रहते हैं, विज्ञान है ना विजिंबिता, वो हमेशा ज्ञान में रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, वो कभी भी अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलते। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था 4.5 में कि तान्यहम वेद सर्वत्र, मुझे सब कुछ याद है। क्या याद है, वेदाहम समेति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, मुझे अतीत में किया हुआ जो कुछ था वो सब याद है, जो भविष्य में होने वाला है वो भी सब खबर है, और जब अभी जो वर्तमान में हो रहा है वो सब जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है। तो श्रभुपाद जी बोलते हैं यही परमात्मा तथा बद्ध जीव में अंतर है। बद्ध जीव या जीव आत्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को भूल गया है, इसलिए प्रकृति के नियमों के वश में आ जाता है। जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति का नियंत्रित है, वो कभी भी वश में नहीं आता है। वो क्या करता है, अपनी शक्ति के द्वारा इस पूरी प्रकृति को नियंत्रण करता रहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।